अथ समीक्षणाद् विषाददर्शनात् मुक्तिजिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः स फलाशक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन साम् ब्रह्मैव सर्वम् इति ज्ञातव्यम् आक्षरं ब्रह्म आप्रयाणं तच्चिन्तनेन अनावृत्तिः तस्य सृष्ट्यादिकं मायया विभूतिषु तस्य अनुसन्धानं भक्तिदढ्याय ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम् कर्मभक्तिध्यानयोगा परम्परया अनन्या भक्तिः आत्मा ब्रह्म इति ज्ञानं भक्तेः फलम् तेन गुणातीतः ब्रह्मभावः स उत्तमः क्षराक्षरातीतत्वात् तदर्थं दैविसंपद आदेया आसुरी च हेया सात्विक्या श्रद्धया तद्भवति एवं कर्मणा सर्वकर्मसन्न्यासेन वा ईश्वरशरणेन मुक्तिसिद्ध्यति मुक्तिसिद्ध्यति इति गीतासूत्रं सम्पूर्णम् ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान निष्ठा संपादित होती हैं और उस आत्मज्ञान से विषाद से सदा के लिए हम मुक्त हो जाते हैं और परम सुख रूपता जो हमारा स्वभाव है उसकी प्राप्ति होती है। ध्यान योग का स्वरूप क्या है जिससे ये सब होता है उसका विचार हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। मन के समस्त विभागों को, जिसको मन कहा जाता है, चित्त कहा जाता है, बुद्धि कही जाती है, क्रिया पक्ष हो, भाव पक्ष हो और ज्ञान यानी विश्वास पक्ष हो, इन सब को उपसंहृत कर, एकत्रित कर परम आत्म वस्तु में मन को लगाना होता है। 25वें श्लोक के आधार पर हम विचार कर रहे थे, आइए उस पर उसका उच्चारण कर लें। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे मन को उपरत करके, शांत करके, आत्मसंस्थम आत्मा में सम्यक रूप से स्थिर कर दें। इससे करेंगे, कहा कि धृति गृहीतया बुद्धिया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, धैर्य पूर्ण जो निश्चय है कि ये काम हमको करना है, ऐसा निश्चय जो नाना प्रतिकूलता और असफलताओं में डिगता नहीं, उसको बोलते हैं धैर्य। थोड़े से असफलता लगी, एक दिन नहीं हुआ, दो दिन नहीं हुआ, हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो इस मामले में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको तो एक क्षण में ही हो गया, होता तो एक ही क्षण में है, लेकिन उनकी जन्म जन्मांतरों की जो साधना है उसको आप नजरअंदाज कर देते हो। साक्षात भगवान ही बोलते हैं कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति, इसी में बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम। तो एक धीरज और एक अटल निश्चय है, इसके बिना इसमें बहुत ज्यादा प्रगति आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये सब सत्संग और ये सब सुनने की बड़ी आवश्यकता, ध्यान की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं आप लोग। आप ये मत समझिएगा खाली आसन में बैठ करके जो करते हो उतने का नाम ध्यान है, ये पूरे हमारे मन को तैयार करता है। तो धृति गृहीतया बुद्ध्या उपरमेत, दो प्रक्रिया कल हमने बताया, एक का नाम योग, एक का नाम ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसकी पुष्टि की है, बल्कि इन्हीं के कहने से ही महापुरुषों ने, वशिष्ठ आदि महापुरुषों ने इस विचार को स्पष्ट किया होगा। 13वें अध्याय में एक श्लोक आता है, आत्मदर्शन के उपाय क्या है, 24वां श्लोक है। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति, अच्छा उच्चारण करी लो, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। मुख्य रूप से दो उपाय पर हम विचार करेंगे। कर्मयोग आदि तो आपने सुना है। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा कुछ साधक अपने आप को ही स्वयं ही स्वयं को स्वयं में देखता है। आत्मनि आत्मानम आत्मना पश्यति। अब ये ध्यान क्या है और कुछ साधक अन्य सांख्येन योगेन, दूसरे साधक जो हैं सांख्य योग की प्रक्रिया से आत्मदर्शन करते हैं। तो ध्यान का ही नाम मैंने कल जो योग कहा था, वृत्ति निरोध, वो ध्यान है। और दूसरा क्या बताया था, साक्षी भाव। वृत्ति को निरोध मत करो, चित्त के किसी वृत्ति को बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र उन वृत्तियों को बहुत अच्छी तरह आप देखिए, छोड़ दीजिए सारे ढीले ना। तो वो दूसरा जो उपाय है उसका नाम है सांख्य योग। तो ध्यान शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं, ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनश्च प्रत्यक्चेतयितरि एकाग्रतया यच्चिन्तनं तद्ध्यानम्। ध्यान है मन को, आपकी चेतना को बाहर जो फ्लो हो रहा है उसमें से समेट करके उसके सोर्स में ले जाना। तो सबसे पहला काम होता है शब्दादि, जो आप इंद्रियों से, श्रवण इंद्रिय से शब्द अनुभव करते हैं, नेत्र से रूप का दर्शन करते हैं, तो इंद्रिय से ठंडी गर्मी का अनुभव करते हैं। तो इन इंद्रियों से जिन विषयों का आप अनुभव करते हैं, उनमें से इन इंद्रियों को वापस लौटाना और मन में स्थापित करना, फिर मन को उसके जो उसके भीतर जो उसको चेतित कर रहे हैं, उसको चेतना दे रहे हैं, उस प्रत्येक चेतयिता में स्थापित करना। और स्थापित करके निरंतर उसके चिंतन में तैल धारावत अविच्छिन्न, तेल की धार की तरह निरंतर उसको चिंतन करना या उसका अनुभव करना, अन्य कोई वृत्ति नहीं आए। और एक समय वो वृत्ति भी इतना शांत हो जाता है कि जैसे भगवान कहते हैं कि न किंचिदपि चिंतयेत, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अनात्म चिंतन छोड़ो और एक समय आत्म चिंतन भी छोड़ो, वो भी छूट जाता है। तो इसमें भगवान भाष्यकार ने तो बड़े झट से लिख दिए, बोल दिए, लेकिन उसी को वो भगवान जो कहते हैं ना, शनै शनै रूपरमेति, एक एक भूमि पार करके मन समाहित होता है। तो इसमें कई भूमियां हमारे शास्त्रों में बताया कि कैसे मन क्रमशः भीतर की ओर आते हैं, उसको हम संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और सांख्य योग का क्या मतलब है वो भी थोड़ा सुन ले। भाष्यकार ने कहा सांख्यम नाम, सांख्य क्या है, इमे सत्व रजस तमांशी गुणा, ये देखो ये सत्व गुण रजगुण और तम गुण के ही ये सारा जो अनुभव होता है ना, दृश्य अहम से लेकर के सब कुछ, मैं आप जो कुछ अनुभव में आ रहा है माने ऑब्जेक्ट है, ये सारे जो हैं गुण हैं माने गुणों का परिणाम है, माया दृश्या, इन सब मैं देख रहा हूं। अहम तेभ्य अन्यः, मैं उनसे भिन्न हूं। इस समय तो हमारा पूरा तादात्म्य है, इस समय जो मैं हूं, इस मैं अनुभव में ये सारे दृश्य घुसा हुआ है, दृष्टा भी है पड़ा हुआ, कहां जैसे बादलों से आसमान छुप जाता है ऐसा, या बादलों से सूरज छुप जाता है ऐसा, और उसमें से कोई एक जो बादल थोड़ा चमक रहा है उसी में उसी को आप दृष्टा समझ करके बैठ जाते हो, वास्तविक दृष्टा वो है नहीं। तो अहम तेभ्यो अन्य, मैं उनसे भिन्न हूं, तद व्यापार साक्षी भूत, समस्त क्रियाओं का मैं साक्षी हूं, नित्य और मैं जो हूं वो नित्य हूं, ये नहीं कि कभी बुझ जाता हूं और कभी जल जाता हूं, अर्थात सुषुप्ति में स्वप्न में और जागृत में मेरा कोई अंतर, एक बड़ी भारी जो है कसौटी है, आप दृश्य को ही मैं करके पकड़ रहे हो तो सुषुप्ति में बुझ जाओगे, समझे ना। तो और गुण विलक्षण आत्मा, गुण से विलक्षण आत्मा हूं मैं, इस प्रकार का चिंतन। अब इसको थोड़ा सा एनालिटिकली हमको देखना है। तो एक हुआ ध्यान माने योगात्मक, ध्यान योगात्मक, एक विचार योगात्मक या विवेक का है, विचार शब्द थोड़ा सा आपको स्थूल मालूम पड़े। तो जो विवेक है, विवेक में क्या हो रहा है, आप दृष्टा बनने की कोशिश मत करिए और नहीं आप अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करिए, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखो तो असल में कुछ करना नहीं है, यही मूल बात है, लेकिन ये जल्दी समझ में आएगा नहीं है ना। जब हम करना छोड़ दें तब काम बनता है, और असल में वृत्ति निरोध शब्द का भी वही, वृत्ति माने क्रिया, किसी ना किसी रूप में दिमाग की हो, चित्त की हो, बुद्धि की हो, क्रिया। तो क्रिया रुक जाए तब असल में काम बनने वाला है, लेकिन वो रोकने का भी एक ढंग है, ऐसे नहीं रुक जाएगा। तो क्या करना है, तो जो भी वृत्तियां हैं उसको बिना छेड़खानी किए, डिस्टर्ब किए, उसको होने दीजिए, आप उनके साथ मत होइए, आप अच्छी तरह देखो उसको, खाली एक अवेयरनेस की जरूरत है। आत्मा ऐसे तो कभी नहीं देखी जाएगी चित्त से, अगर हम देखने की कोशिश करें आत्मा को, ब्रह्म को, तो इंद्रियों से तो कोई बात ही नहीं है, मन से भी वो देखा नहीं जाएगा, मन उससे देखता है, ठीक है। और ये आत्मा सदा अविषय बना है, विज्ञातार मरे केन विजानियत, ये वेदांत की एक मूल बात है, आत्मा कभी भी दृश्य नहीं होगा, तो फिर आत्मदर्शन का क्या उपाय रहा। तो कहा कि माइंड एक्टिविटी के बिना, ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार एफर्ट के बिना, किसी भी प्रमाण के बिना, आत्मा माने आप स्वयं को सदा जानते हो, सदा जानते हो, बिना जाने बिना प्रयास किए जानते हो। ध्यान दीजिएगा, एक ज्ञान होता है, जैसे ये पुस्तक हम देख रहे हैं, ये तो प्रमाण से माने नेत्र से मन से ये सब मिला करके एक जो ये हमारी यूनिट है बॉडी माइंड फैकल्टी मिल करके ये ज्ञान हुआ कि हाँ ये पुस्तक है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी प्रकार के अनुभव यानी एक्सपीरियंस आप दिन भर में गुजरते हैं, एक कांस्टेंट एक ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, उसको आप किसी भी इंद्रिय से और या मन से जानना नहीं पड़ता है। बल्कि जहां सुषुप्त हो जाते हो, समस्त मन व्यापार इंद्रिय व्यापार समाप्त हो जाता है, उसको भी वो प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित होता है। जैसे एक उदाहरण ले लो छोटा सा, आप इस समय अपने आप को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? निश्चित रूप से जान रहे हैं। अच्छा, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप हैं? है। कैसे आपने बोला, किस प्रमाण से? बिना प्रमाण से बिना जाने बोल देते हो झूठ। कहा कि कैसे जानते हैं अपने आप को, बताओ तो। कहा कि महाराज कैसे जानते, ये देख रहा हूं, ऐसा देख करके जानते हैं। तो जब आंख बंद करोगे तब क्या आपको अपना पता नहीं लगेगा? अंधेरे में अगर मैं पूछूं आपसे कि आप हो, आप कहेंगे कि महाराज एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा बत्ती जला करके देख लेता हूं मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा करते हो। इसका मतलब है कि बिना आंख से देखे आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने होने को जानते हो। अंधे को भी पता लगता है कि मैं हूं। कैसे जानते हैं? कहा कि महाराज मन से जानते हैं, ठीक है ना, मन से जानते हैं, मन से जानते हो। अच्छा ठीक, मैंने पूछा आप हैं? अगर किसी विषय के बारे में आपसे पूछे कि भैया छठे अध्याय में ध्यान का क्या स्वरूप है, तो आपको बताने के लिए सोचना पड़ेगा कि नहीं? सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। मन से जिसको जानते माने सोच करके हम उसको बोलते हैं। तो आप अपने आप को जो मैं पूछूं कि आप हो, तो आप बोलोगे कि महाराज एक मिनट मैं सोच लूं कि मैं हूं कि नहीं हूं। बिना सोचे आप बोलते हैं कि मैं हूं। हाउ, कैसे? तो इसका मतलब है कि मन के सोचने विचारने से अपने जानने में कोई अंतर नहीं आता है। तो एक जो सत्ता है, आत्मसत्ता, वो सदा स्वयं प्रकाश है, वो सदा अपने आप को जानता ही है। स्वयं प्रकाश को अगर थोड़ा सा ढीले ढाले शब्द में बोले तो अपने आप को सदा जानता रहता है। ये जो सदा विद्यमान ज्ञान है, और एक ज्ञान है जो प्रमाणों से होता है और गायब होता है, होता है और गायब दिन भर के ना, तो ये दोनों ज्ञान एक साथ में घुल मिल करके विद्यमान है। तो मन का काम माने ये जो सांख्य योग या जो ध्यान की दूसरी प्रक्रिया को जो अपना रहे हैं, सांख्य योग जिसको हम बोल रहे हैं, ज्ञानम सम्यक अवेक्ष, उसका काम क्या है? मन से काम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो आत्मज्ञान सबको ही है ना। तो
तो फिर करना क्या, हमारी समस्या तो गई नहीं, आत्मा तो सदा प्रकाशमान है। तो हमारी समस्या जाएगी एक अवेयरनेस, एक खोज कि एक अनित्य ज्ञान है और एक इसको अलग अलग इसके जो चरित्र हैं इसके बारे में एक सजगता आपके भीतर आ जाए। जैसे अभी जो हम लोग विचार कर रहे थे, थोड़ी सजग हो रहे थे कि नहीं उस बारे में। तो आत्मा तो सदा स्वयं प्रकाश है, लेकिन स्वयं प्रकाश के बारे में सजग होना ये हमारा क्रिया है, हमारी साधना है। ध्यान में आई बात? तो यहां पर कोई वृत्ति आपको बनाना नहीं है। आपके चित्त में, आपके अनुभव क्षेत्र में आत्मा भी आया हुआ है और अनात्मा भी, दोनों का ज्ञान है आपको इस समय। अब दोनों के ज्ञान चित्त क्षेत्र में, साइक फील्ड में, अब उसमें आपकी जो विवेक डिस्क्रिमिनेशन फैकल्टी है वो खाली जो आने जाने वाला है और जो कॉन्स्टेंट है इनको अलग करने का काम करता है। और जैसे ही एक बार, पहले तो थोड़ा एक छोटी सी क्षण भर के अवेयरनेस होगा आपको, लेकिन उतने क्षण भर की जो एक सजगता है वो आपके मन को, आपकी आत्मा को बड़ी बड़ा बल दे जाएगा। और जैसे ही बारंबार आप उसको पकड़ने लग जाओगे, एक समय एकदम जैसे मक्खन अलग हो करके और छाछ अलग हो जाता है, इसी प्रकार ये चित्त के अन्य वृत्तियों से ये जो नित्य ज्ञान है बिल्कुल अलग हो जाता है। तो एक तो भैया ये प्रक्रिया है, ठीक हो गया। अब समय होता तो इसमें दो दिन हम और लेते तो आपको ज्यादा लाभ होता बात, लेकिन आप लोग पुराने सत्संगी हो तो एक संकेत करते हुए हम चल रहे हैं। दूसरा जो ध्यान योग वाला प्रक्रिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी विवेक का सहारा लेते हैं, लेकिन वृत्ति निरोध इसमें मन को मन के साथ में थोड़ा प्रयत्न करके वहां पर बैठाना होता है उसको। तो इसको भी कर लीजिए जो आपको सुविधा मालूम पड़े। भगवान तो दोनों को खुला छोड़ दिया ना। अच्छा, इसके लिए क्या करना है ध्यान योग में? तो ध्यान योग में शनै शनै एक एक क्रम से आप भीतर आते हैं। भीतर आने के लिए बाहरी ऑब्जेक्ट से कुछ भीतरी ऑब्जेक्ट, स्थूल से कुछ सूक्ष्म, सूक्ष्म से कुछ और सूक्ष्म, इस प्रकार से आया जाता है। होता वहां पर भी ऐसा ही है सांख्य विचार में भी, लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं है, उसको वो सीधा खोज कर रहा है कि नित्य सत्ता, नित्य चैतन्य और अनित्य वृत्ति आत्मज्ञान। तो ध्यान योग में जो भूमि है उसमें हम कैसा अग्रसर हो, तो सबसे प्रथम भूमि, प्रथम काम हमको क्या करना है? बाहरी इंद्रियों को उनके तत्तद विषयों से समेट करके मन में ले आना है। देखो ध्यान की सैकड़ों प्रक्रिया है, हम मुख्य रूप से छठे अध्याय में भगवान ने जो बताया उस पर केंद्रित है। ये जो भूमियां हैं इस भूमियों को बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया कठोपनिषद में। यच्छेद वांग्मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। इसको यूं भी समझ सकते हो, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार से ही मुख्य रूप से उसके पहले का जो यम नियम आसन और प्राणायाम ये प्रसिद्ध ही हैं, ये थोड़ा सा बाहर चीज है। अब प्रत्याहार एक प्रकार से सीधे हम मन से अब डील कर रहे हैं। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है बाहरी इंद्रियों को उसके विषय से ला करके मन में स्थापन करना, जैसे यहां भाष्यकार ने भी जो हमने सुनाया आपको त्रयोदश अध्याय का वही कहा, कैसे करे वो। तो मन को अगर एक प्रिय ऑब्जेक्ट जिसको पकड़ने में सोचने में उसको अच्छा लगता है, थोड़ा सात्विक होना चाहिए। ऐसे तो योग सूत्रकार ने यथाभिमत ध्यानात्मा कहा, वो ऑब्जेक्ट दे दो आपके लिए, एक भगवान का नाम ही ले लो, है ना। देखो भगवान नाम जो है इसकी महिमा तो वेद पुराण आदि सब जगह है, और ओंकार उपासना की कितनी महिमा है हमारे उपनिषद और इस परंपरा में। तो ओम क्या है? भगवान का नाम है, या जो भी आपका इष्ट नाम है। तो नाम और यदि उसमें रूप की भी सहारा लेना है तो वो भी ले लो, कोई बात नहीं। तो उनके चिंतन में जब आप तन्मय हो जाओगे, बार बार मन छटक जाता है और लाकर के यहां लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी चेतना समेटने लगी है और बाहरी जगत से आप कट ऑफ हो रहे हो। अपनी चेतना, बाहर क्या आवाज हो रहा है या नहीं, ये सब आपको ध्यान नहीं आएगा। जैसे आप स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है, मन तो वहां चंचल ही है ना, परंतु बाहरी इंद्रियां काम नहीं करता है। आप इन आंखों से तो स्वप्न नहीं देखते हो ना, इन्हीं आंखों से देखते हो, तब तो भाई चश्मा लेकर के सोना पड़ेगा। तो दिखता है, सुनता है सब कुछ, लेकिन वो सारी चीजें मन की हैं। और ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं, ये आंखों से ही देखता हूं, कान से ही सुनता, ऐसे ही मालूम पड़ता है ना वहां। तो बाहरी जगत से अपने पांचों बाहरी इंद्रियों को समेट करके उस समय जो है मन में रख दिया जाता है, किस समय? स्वप्न में। इसी प्रकार ध्यान में बैठ करके, जैसे भगवान का लीला चिंतन ही कर रहे हैं आप, भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं यमुना तट पर, उनके साथ सखाएं हैं और ये सब मस्ती कर रहे हैं, अगर उसी में अगर आप इतना खो गए कि आपका जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो छूट गया, क्योंकि स्वप्न में स्थूल देह का भान नहीं रहता है। तो यदि ऐसा हो जाता है कि चिंतन करते करते आप अपने शरीर को और बाहरी चीजों को भूल गए, तो ये प्रथम भूमि हो गई। और जब ऐसा आपके मास्टरी हो जाए कि जब चाहे हम मन के चिंतन में खो सकते हैं और ये इससे कट हो सकते हैं, तो आप प्रत्याहार सिद्ध हो गए। समझे बात को? प्रथम भूमि हो गई। तो हमने एक विषय के रूप में भगवान नाम जप और तद्रूप चिंतन, ना तद्जप तदर्थ भावनम बोलते हैं योग सूत्रकार। नाम का उच्चारण करो और नामी, जो नाम का अर्थ है, अगर उसमें आपको रूप प्रिय लगता है, बिना रूप का भी अर्थ होता है, तो रूप प्रिय लगता है तो उसी का आप खूब प्रेम से चिंतन करो और उसमें खो जाओ। इसके बाद दूसरी सीढ़ी होगी धारणा। धारणा में क्या होगा? अब बाहरी इंद्रियां तो अपना अपना व्यापार छोड़ दिया, एक काम तो आपने कर लिया, ठीक है ना, लेकिन मन जो है घूम रहा है नाना, वो यमुना जी को भी देख रहे हैं और जो कन्हैया को भी देख रहे हैं, कभी आसमान को भी देख रहे हैं, अब बहुत सारे विषय उसके पास है घूमने के लिए। लोग कहते हैं कि महाराज भागवत में इतने जो है गाना बजा ये सब होता है। अरे होता है तभी तो देखते हो सुनते हो। तो गाना बाजा हो लेकिन भगवान से जोड़ करके हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, ज्यादा जो हमारा मन चंचल रहता है ना, उनको थोड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन उससे आगे बढ़ना है, अर्थात अब मन को समझ लीजिए कि उनके केवल उनके रूप में आपको फिक्स्ड करना है। अब यमुना जी गई, सखा गए, बादल आकाश सब गया, केवल वो जो है बांसुरी लिए हुए बंशी विभूषित करात, ठीक है। अब जब इसमें बंध जाएगा आपका चित्त, एक ऑब्जेक्ट में जब आप बांध लिए उसको, तो वो धारणा कहलाती है। प्रत्याहार और धारणा में फर्क समझ में आया? तो ये आप समझ रहे हैं कि इसमें कितना समय आपको देना पड़ेगा और कितना अभ्यास की आवश्यकता है ना भैया। आप योग के मास्टर बन रहे हो, माने रियल योगी आप बन रहे हैं, खाली शब्द पढ़ के नहीं, तो इसमें तो आपको बड़ी अभ्यास की जरूरत होगी। कोई भी विद्या तो यूं ही नहीं आ जाती है। अब धारणा में क्या हो रहा है, एक रूप को हमारा मन देखता है, लेकिन उसके भीतर उस देश के भीतर वो घूम रहा है, अर्थात कभी उनके मधुर मुस्कान की ओर हमारा ध्यान जाता है, कभी जो है उनके दृष्टि की ओर ध्यान जाता है, कभी जो है बांसुरी की ओर ध्यान जाता है, कभी चरण की ओर ध्यान जाता है। तो मन काफी शांत तो हो गया, लेकिन उसमें भी वो घूमना फिरना उसका चालू है। तो जब आप आंखों को देखोगे, आंखों को देखने के बाद जब आप मुस्कान की ओर आओगे, आपकी वृत्ति बदली कि नहीं बदली? तो वृत्ति जब तक बदलती रहती है, तब तक असल में पारिभाषिक दृष्टि से जिसको ध्यान कहा जाता है वहां पहुंचे नहीं हम लोग। तो ध्यान शब्द बड़े ऋषि पतंजलि ने बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज किया है, उसको बड़ी स्पेसिफाई किया है, टर्मिनोलॉजी दिया है। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्ययिकतानता। अब उस जिस ऑब्जेक्ट में आपने धारणा सिद्ध किया, जो आपका ध्येय वस्तु है, उसमें जब आप किसी एक ही चीज को देखते देखते बस उसी को देखते हैं और बाकी दूसरी वृत्ति नहीं बनती है, वहीं पर फिक्स्ड हो गया समझ लो। चाहे आंख देख रहे तो आंख ही देख रहे हैं। हाँ? कहते हैं कि महाराज इतने देर से क्या आंख देखना है? अरे भैया देखने वालों को पूछो पता लगेगा। वो तो 24 घंटे देखते रहते फिर भी थकते नहीं है, है? अर्थात उनकी जो सुंदरता है वो एक्सपीरियंस करता है ना वो। और पहले हमने कहा उन्होंने अटैचमेंट जोड़ दिया, विश्वास जोड़ दिया, वो सारे सपोर्टिंग चाहिए। मैंने देखो आप कर तो रहे हैं ए कॉन्शियस एफर्ट, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके माइंड का, वो तैयार है तब ये सब होगा ठीक ठाक। तो जब आप या तो पूरे रूप को एक साथ में आप देख रहे हो, लेकिन चित्त बिल्कुल स्थिर हो गया और उसमें वृत्ति बदल नहीं रही है, बिल्कुल समान आकार वृत्ति प्रवाह ही चल रहा है, विषय नहीं बदल रहा है उसका, ठीक है। तो ऐसा जब हो जाएगा तो ध्यान कहा जाएगा। ये आपने और आगे की भूमि पर चढ़ गए, प्रत्याहार से पहले प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान में आ गए। ध्यान का अर्थ क्या हो गया? सीधे साधे शब्द में एकाग्रता, एक अग्र हो गया उसका। अब इसके बाद समाधि, वो ध्यान का ही एक परिपक्व रूप है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। अब उसको देखते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि आपकी अपनी जो एक सेपरेट एग्जिस्टेंस का बोध था, कॉन्शियस था, वो डिजॉल्व हो गया और आप वो ध्येय के साथ एक हो गए। अब आपको लग रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं, कृष्ण और मैं दो नहीं रहा। किसी भी तन्मयता की चरम स्थिति में ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, ये आइडेंटिटी भी भावना ही है, ये भी मन से ही होता है। अब मन उस ध्येय पदार्थ में इतना तन्मय आपका हो गया तो फिर आप अपने आप को ध्याकार महसूस करते हैं। जब ऐसा हो जाता है तदेव अर्थ मात्र, अर्थ माने ध्येय वस्तु, वही खाली रहता है स्वरूप शून्यमिव। मैं कोई अलग सत्ता ध्यान लगा रहा हूं और ध्यान लगा रहा हूं, ये क्रिया कर रहा हूं, ये दोनों बातें डिजल्व हो जाती है, यानी एक प्रकार से जो त्रिपुटी का बोध है ये लूज हो जाता है और एक खाली ध्येयार्थ अवभास रहता है। उसको बोलते हैं भैया समाधि। तो ध्यान की परिपक्व रूप है, इसलिए कई बार आपने सुना होगा ना, वो पंचदशी में आता है कि एक आया था ध्यान करने गुरुजी के पास, तो किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं लगता, तो भैंस का ही उसका वो चिंतन जाता था, बहुत प्यारी भैंस थी उसकी। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा कर तो फिर भैंस का ही ध्यान कर ध्यान तो कर। हम लोगों की समस्या ये है कि हम भैंस भी सोचते, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन किसी का एक एकाकार चिंतन तो नहीं करते। और जब उसका बढ़ावा, अब उसका आनंद आ गया क्योंकि उसके मन का जो विषय है वो मिल गया। तो देखो, अपने जो राग है, अपनी जो विशिष्ट अभिरुचि है, उससे हमेशा ही आप स्ट्रगल करो, उसके डशिंग पुशिंग करो, कोई जरूरी नहीं है, उसको भी काम में लेना चाहिए बुद्धिमत्ता से। तो अब गुरुजी जब बुला रहे हैं कि चेला बाहर आ जा, तो चेला बहुत देर से तो उसी में थे। अब फिर थोड़ी देर में बोलते हैं, जब गुरुजी का आवाज तो थोड़ा सुना, माने ध्यान थोड़ा कम हुआ, तो बोलते हैं कि गुरुजी मैं बाहर तो आ नहीं सकता। अरे क्यों नहीं आ सकता? बोले मेरा सिंगार रहा है माने वो अपने को भैंस समझ रहा है और वो दरवाजे से कैसे निकले, अब सिंह अड़ रहा है तो कहने का अर्थ है कि वो ध्येय का अभिमान, ध्येय का आवेश आप में हो जाता है, जिसका ध्यान करते हो वैसा। तो ये हो समाधि। अब जो है ये तो किसी एक रूप को लेकर के बात हुई, अब इसमें से वो रूप के भीतर जो चैतन्य सत्ता है वहां तक पहुंचने का क्रम बाकी रहता है। तो कठोपनिषद में बताया कि भैया ऐसा करो, पहले तो बाहरी इंद्रियों को मन में सौंप दो, धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच जाओ, और फिर मन को तद यच्छेत, अब उसके भीतर की ओर हम दौड़ लगा रहे हैं, मन के भीतर अब जाने में हमारा सामर्थ्य हो जाएगा, अभी तक नहीं था, अभी तक मन तो बाहर ही घूमता है। तद यच्छेत ज्ञान आत्मनि। अब मन की वृत्ति दो प्रकार से उठ रही है, एक मैं और एक यह, ठीक है ना। अब केवल अहम वृत्ति को पकड़ लो, अहम, और अहम के साथ में जो आगे पीछे जो मैं मनुष्य हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं वो हूं, ये डिजल्व हो जाएगा। प्योर अहम कॉन्शियसनेस को पकड़िए, और फिर अहम कॉन्शियसनेस से तद यच्छेत महतद ज्ञानम आत्मनि, ज्ञानम महति आत्मनि नियच्छेत। अब इस अहम में जब आप कॉन्सेंट्रेट होते हो, और अहम को कौन चेतन कर रहा है उसको जब आप देखने की कोशिश करते हो, तो एक विराट अहम आपके सामने उपस्थित होता है, महान आत्मा बोलते हैं। तात्पर्य यह है, जैसे समुद्र में बहुत सारे तरंग है ना, प्रत्येक तरंग अलग अलग दिखता है, लेकिन सभी तरंग जुड़ा हुआ कहां से? समुद्र से। किसी भी तरंग में डुबकी लगाओ, कहां पहुंचोगे? समुद्र में। तो हमारी, देखो, हमारी दो आइडेंटिटी है, अगर हम ऐसा शब्द प्रयोग करें तो। एक तो छोटा जो लहर जिससे हम आपसे अपने आप को अलग देख रहे हैं, सब अपने आप को अलग देख रहे हैं, लेकिन सब जो है ना ये हाँ जुड़े हैं कहीं पर। और वो जो हैं जो सामान्य अहंता बोलते हैं, सामान्य अहम, एक सामान्य, एक हाँ एक विशेष, तो जो सामान्य अहम है वो सब में एक ही उपादान होता है उसका। अर्थात आप, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा जो विशेष, मैं फलाना नाम वाला, ये सब विशेषताएं अगर आप छोड़ दोगे तो जो बचेगा आपके भीतर, जो बचेगा मेरे भीतर भी वही बचेगा। ध्यान में आई बात ना? तो वो सामान्य अहम है। तो सामान्य अहम में पहुंच जाओगे तो सबके साथ में एक प्रकार की एकात्मता स्थापित होगी, लेकिन वो भी अभी अंतिम जगह नहीं पहुंचे हैं। वो भी एक वृत्ति का एक मानस, हाँ, साइकिक फील्ड है वो, एक जो है माने कलेक्टिव माइंड है या कॉस्मिक माइंड कह लो, जिसको हम लोग हिरण्यगर्भ कहते हैं हमारे शास्त्रीय भाषा में, उसमें आप पहुंचे, लेकिन अंततः वो भी तो सुषुप्ति में नहीं रहता है ना, ना सामान्य अहम रहता है ना विशेष अहम, तो इसलिए वो प्योर आत्मा नहीं है। अब उसको भी, उसका जो प्रकाशक है, अब आपको पकड़ने में सुविधा हो जाएगी। तो उस आत्मा को, महान आत्मा को, तज्जच्छित शांत आत्मनि सर्वाधिष्ठान भूत प्रत्यगात्मा में उसको लगाए। तो इस प्रकार से ये ध्यान योग बाहर से भीतर की ओर गति करने की प्रक्रिया है, और आत्म संस्थं, आत्मा में सम्यक स्थापित करो तो वो फिर वो अनुभव आपको प्राप्त होगा कि सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो महाराज हमारा काम बन जाएगा। जो वेदांत आपने सुना तो ये सुनने वेदांत ही ज्ञान देगा, लेकिन वेदांत प्रमाण काम इसलिए नहीं कर रहा है कि मन बहुत विक्षिप्त है, मन में बहुत सारा दोष है, तो कुछ दोष कर्मयोग से आप संशोधन करोगे और बाकी दोषों की निवृत्ति ध्यान योग से करेंगे। तो इस प्रकार से सारे दोषों की माने प्रतिबंधकों की जब निवृत्ति हो जाएगी तो आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखो, गीता सूत्र छठा ये पूर्ण कर रहा हूं भगवान की कृपा से, और यही युक्त योगी हो जाता है। अंतिम श्लोक का थोड़ा उच्चारण ही कर लूं। योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगियों में भी नाना प्रकार के ध्यान का ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अंततः ये सब आपका उपाय है। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? मद गतिन अंतरात्मना, जिसने सर्वाधिष्ठान सबकी आत्मा जो मैं हूं उस आत्मा में अपने को डुबो दिया, अपने अंतरात्मा को लगा दिया, मैंने आत्मसंस्थम कर दिया। ऐसा करके जो मेरे चिंतन में डूबा है श्रद्धावान हो करके, जो मांग भजते वो युक्ततम है। इस स्थिति में वो स्वतः साक्षात्कार होता है। जब साक्षात्कार हो जाएगा अज्ञान नष्ट होगा, उसके बाद आप ध्यान करो और न करो, दोनों स्थिति में वो आत्मा तो कभी कहीं जाती नहीं है। भगवान ने कहा ना, तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। तो इसलिए उस समय फिर योग की भी और जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ये रास्ता से चलना ये साधक के लिए हितकर है। अच्छा, इस अध्याय में इस सूत्र के द्वारा जो
ध्यान योग की महिमा हमने सुना, तो इसमें कई चीजें सुगीता में हमने दी है, छोटी छोटी चीजें। एक तो भैया आप स्वयं ही अपना शत्रु हो और स्वयं ही आप अपना मित्र हो, इतना भी अगर निर्णय या पहचान व्यक्ति का हो जाता है अपने लिए कि भैया मैं ही अपना शत्रु हूं, मैं ही मित्र हूं, तो आपकी साधना बहुत बढ़िया चलने लग जाएगी। क्योंकि हम लोगों को हमेशा वो दूसरा ही मालूम पड़ता है ना, दूसरों से ही हमारी ज्यादा शिकायत है ना। तो ये समस्या है, अपने प्रति पूरा ध्यान नहीं आता है कि मैं स्वयं खुद रेस्पॉन्सिबल हूं, या तो दूसरों को कर देते हैं और थोड़े सत्संगी लोग भगवान को ही ब्लेम कर देते हैं, ये भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, भगवान ने ऐसा कर दिया महाराज। तो भैया ऐसा है, इसमें सही ढंग से प्रोग्रेस होगा जब आप अपने आप को, भगवान तो सबको जैसे सूर्य की तरह, सूर्य के बिना तो, प्रकाश के बिना तो हम देख नहीं सकते, लेकिन आंख खोलना किसका काम है, ये तो आपके ऊपर छोड़ा है। तो इसलिए वो आंख खोल करके प्रकाश को सरेंडर हो जाओ, तो ये चीज है। दूसरी बात जो है, भगवान ने बताया सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, आत्मोपमेन सर्वत्र, जो सबके सुख दुख को अपना सुख दुख जैसा समझने लगता, मैंने सबके साथ जब तक एक निस्वार्थ आत्मीयता का भाव, सबको अपना दिल से मानने का भाव जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक इस उच्च भूमि पर हमारी चेतना चढ़ेगी नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात जो है, भगवान ने बड़ा आश्वासन दिया। सब लोग सोचते हैं कि महाराज हमारा क्या होगा, अरे भैया तेरा अच्छा होगा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान खुद आश्वासन दे रहे हैं, पार्थ इस लोक में अथवा परलोक में उस साधक का विनाश नहीं होता, क्योंकि कल्याण कर्म करने वाले किसी दुर्गति को नहीं प्राप्त होती। तो इतना भरोसा तो भगवान पर रख ही सकते हो, हैं? आप लगे रहो और कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपका विनाश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और प्रेरणा खूब दिया कि योगी बन जाओ भैया, देखो अर्जुन तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, माने खाली पोथी जिसने पढ़ लिया एकेडमिक उनसे भी श्रेष्ठ हैं, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए तस्माद योगी भवार्जुन, योगी बन जाओ। अब अध्याय का सार पढ़ लेता हूं, एक बार पूरी बात आपको ध्यान आ जाए। ज्ञान का बहिरंग साधन कर्मयोग सिद्ध हो जाने पर उसका अंतरंग साधन ध्यान योग का अभ्यास करें। पवित्र तथा एकांत स्थान में भय चिंता से मुक्त होकर एकाकी सर्वदा योगाभ्यास करना चाहिए। धैर्य पूर्वक मन को धीरे धीरे विषयों से निवृत्त कर सर्वात्मा ईश्वर में निश्चल करें। ईश्वर का कंसेप्ट क्या है, जो सबकी आत्मा है, वहां तक पहुंचना है। दृढ़ निश्चय तथा उत्साह के साथ दीर्घकाल एकाग्रता का अभ्यास एवं वैराग्य का अनुशीलन करने पर यह संभव होता है। सभी प्राणियों में अहिंसा भाव, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह एवं आहार निद्रा व कर्म में युक्त आचरण योग साधना का अंग है। योगाभ्यासकारी की कभी दुर्गति नहीं होती। यह अध्याय सार है और अंतिम में एक शिक्षा सेंटेंस है, एक वाक्य में दिव्य आत्मसत्ता की प्रत्यक्ष उपलब्धि के लिए ध्यान का अभ्यास करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सबका खूब खूब मंगल हो और खूब प्रेम से इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।
नारायण 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 नारायण। संतों के श्री चरणों में प्रणाम। हम सबका परम सौभाग्य है ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के दर्शन और उनकी दिव्य वाणी का लाभ हमें इन 14 दिनों मिला। ध्यान योग और आत्मज्ञान के विषय में बहुत सरलता से, सरल शब्दों में और इतने ढंग से स्वामी जी ने समझाया है कि ऐसा लगता है कि ध्यान न करते हुए भी हमारा ध्यान परमात्मा में लग गया। स्वामी जी ने बताया कि ध्यान योग के लिए चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि और कर्म की शुद्धि बहुत आवश्यक है। स्वामी जी ने बताया कि जैसे नदी पार करने के लिए हम नौका का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पार होने के बाद हम नौका छोड़ देते हैं, इसी तरह है। संसार में अपना कर्तव्य कर्म करते हुए हमें धीरे धीरे शनै शनै उससे उपराम हो जाना है। स्वामी जी ने हमें बताया कि मुख्य बात यह है मन की एकाग्रता, ईश्वर में पूर्ण विश्वास मत पड़ता और केवल ईश्वर का ही आश्रय, ईश्वर के सिवाय और कोई भी आश्रय लेना नहीं है, आशा केवल राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। हमें स्वामी जी के शब्दों को जीवन में उतारना है तभी हमारे जीवन में ध्यान योग और आत्म कल्याण होगा। ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो परमात्मा है, वासुदेव है, सर्वम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के शिष्यों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।